राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 28 मई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
भेजा है। वृंदावन उद्धव जी ने आकर के गोपियों से ब्रज में माता यशोदा जी से नंद जी से क्या बातचीत की, क्या ज्ञान दिया, कृपा बताएं।
उद्धव जी ने सब बातें हमारे याद नहीं आई, क्या बताऊं। उद्धव जी साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति उनके शिष्य। तो आए थे वे ज्ञान सिखाने के लिए कि गोपिकाएं विरह करती है रोती है, इनको ज्ञान सिखा दे, इनको ज्ञान हो जाए तो ठीक हो जाए। तो भगवान ने जाओ भाई ज्ञान सिखाओ। तो भगवान ने अपनी पोशाक पहनाई, गोपिका ने सब ने देखा कि भगवान कृष्ण आ गए, वो पोशाक देखी जैसे सब इकट्ठी हुई, देखा हो तो उद्धव जी है। फिर वे बातें करने लगी, पूछने लगी, कन्हैया की बातें पूछने लगी। तो एक पूछती थी कि उसी क्या पूछेंगे, वो तो हमको छोड़ के चले गए। उनका ब्याज क्या हुई, बात उनका बात चलाओ, मैं बात दूसरी चलाओ, उनकी बात मत करो। इतना भंवरा आ गया, भंवरा खोपने वाला कि ये काला है, काला का विश्वास नहीं करना, काले का विश्वास नहीं करना, काला धोखा देना होता है। बातें करूंगी उद्धव जी क्या हुई, वे देखते ही रह गए। समझाया तो तुम्हारे को समझा, मैं जरा ध्यान दो तुम क्या करती हो इसे बेहतर। एक सत्यनारायण परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह है, ऐसे भजन ध्यान करोगे तो आया कि बृजबाला मृगशाला कहाँ लावेंगी, सबके साधु बन जाए तो हजारों की मृगशाला कहाँ मिलेगी। थी तुम भजन करो, तो भजन क्या करे, किसका करे। एक हो तो सो गयो श्याम संग, और को राधे को आराधे और। अब एक मन था वो तो भगवान के साथ चला गया, अब दूसरे की आराधना कौन करे बताओ। वे ज्ञान सिखाते हैं कोई वो सुनती नहीं, वे अपनी अपनी बात करी, लाला की बात करो मत करो, उसकी बात उसको याद ही मत करो, उसका नाम ही मत लो, वो ऐसा ही है वो तो। अब ऐसी ऐसी बात ऐसी है, अगर भगवान ने इसलिए बात मतलब तो महाराज वो ज्ञान बताई टुकटुकी बिरे बताए वो ढोल उदो शुद्ध हो गई और सुनो के इनको बोल ज्ञान टूटी बताई बिरे बताए वो ढोल उदो शुद्ध हो गई कुंभो के इनको बोल फिर बातें कही तुम सुनो संदेश लाया हो कि संदेश सुनाओ और सुनाओ संदेश सुनाओ कौन कौन बात करे उसकी बात ही मत करो उसको नाम मत लो उसको याद ही मत करो यही गोपियां यही कहती थी याद मत करो एक बात याद आ गई कई ब्राह्मण थे एक कहानी सुनी हुई कहानी कोई कथा पुराण की हो तो पता नहीं सुनी हुई कहानी है तो ब्राह्मणों ने विचार किया हमारी ये मदिरा पीते है न जाने इसमें कैसा सुख है कैसा स्वाद है अपनी पीढ़ियों तो देखा नहीं कुछ है तो आनंद ऐसा ही तो अपने चखो देखो तो सही तो ये घर में रहेंगे चारों तक दीवार उसका आडा कर दिया बंद है कई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे मदिरा अब बोलो मत बोलो मत चुप रहो बोलो मत मार हल्ला हो गया मजा पी ली हल्लो हो गया बोलो मत चुप रहो सब बोलो मत बताओ हल्ला हो गया जीव गोद गागोड़ की बात सुनो मत उसी बात कहो मत उसी बात चर्चा करो मत इनमें में हल्ला हो गया तो चक्कर आ गए कभी क्या बात कर इसको तो सुनने में भगत नहीं है समझे यशोदा मैया कहा तो भगवान ने कहा तू मैया को कहना हमारी गेंद है खेलने के हमारे खिलौने है वो मैया को कहना मेरे रख रहे इधर खेलूंगा रोने लगे रोने लगे मेरा लाला कब आएगा मैं मक्खन खिलाऊंगी हाथ से गोदी में लूंगी प्यार करूंगी कब आएगा उद्योगी चक्रा उद्योगी जी को ज्ञान का अभिमान था कि तत्व ज्ञान है उसके समान कोई संसार में है नहीं पर उनका वो प्रेम देखा प्रेम भी विरह का विरह दो तरह का होता है प्रेम एक संयोग होता है एक वियोग होता है कई आचार्यों ने भगवान के योग को श्रेष्ठ माना है और गोविंद महाप्रभु ने वियोग को श्रेष्ठ माना है तो भगवान का वियोग हो जाए जिसमें भगवान की याद विशेष रहे विशेष स्मृति है वो भूले न जाए साथ में उन्हें संतोष हो जाए बैठे यही बैठे विचार है जो मिल लेंगे और जब वियोग होता है तो उसकी उसकी याद होती है तो वो वियोग में रोया करते जगन्नाथ जी और दर्शन को जाते खड़े रहते रोते नीचे पाप में भर जाता और स्वर पानी भर जाता रोते देते अंत में समुद्र को देखा श्याम श्याम मिले ही नहीं भगवान भगवान का प्रेम ऐसा ही है वियोग में बहुत ज्यादा मधु होता है विलक्षण होता है इसलिए जब उनकी बातें सुनी तो उद्धव जी ने कहा आसाम हो चरण रेण दुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि लुत्फुल्मलफौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजनुमार्य पतंत हित्वा भेदुर्मुकुंद पदवीं सुदिभेद विज्ञाम आसाम हो चरण जेणु साम ये जो गोपिकाएं हैं इनकी तरण हेतु मिल जाए, तरण की वो रज्जी दूरी जिसमें इनका तरण टिका वो मिल जाए तो क्या करूं, कैसे मिले? तो वृंदावन में भूमि में छोटे छोटे पौधे वो बन जाऊं, बड़ा वृक्ष नहीं, बड़े वृक्ष तो ऊपर जल्दी पहुंचे भी नहीं, छोटे छोटे गुल में लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। लता है, द्रुद है, औषधि है, ये अलग अलग संज्ञा है। तो इसमें मैं बन जाऊं, उद्धव क्यारी है, वह उद्धव जी लता पता बने हुए हैं, उद्धव क्यार में आज भी लोग कहते हैं। उन्होंने ये इच्छा करी, बृहस्पति जैसे उनसे ज्ञानी वो करते हैं, गोपिकाओं की चरण रज्जी मिल गया। क्या विलक्षण है गोपिका में? उन्होंने कहा स्नेहा अपने माँ बाप, अपने स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई, ये स्वजन होते हैं अपने खास निकट के संबंधी, ये खास निकट के संबंधी है। तो माँ बाप को और स्त्री पुत्र को भूला नहीं जा सकता। तो गोपिकाओं ने परवाही नहीं की, ना पत्नी की ना पुत्र की, उधर ना भाई संबंधी कुटुंबी होगी, ना ही देवर जेठ ना दादी की सास, इसका त्याग कर दिया। इसके बाद विलक्षण बात बताई, आर्य पथन से हित्वा, जो शास्त्रीय वैदिक पद्धति है अपने वर्ण के अनुसार आश्रम के अनुसार अपना जीवन बनाना, वो आर्य पथ है, श्रेष्ठ मार्ग है। उस श्रेष्ठ मार्ग का प्रभाव है, लोग कहे खराब कहे तो खराब ही सही, कि व्यभिचार नहीं है, द्व्याचार नहीं है, द्विगुणी है, सब स्वीकार, और भगवान का वियोग स्वीकार नहीं। वियोग हो तो चर्चा उसी की, चिंता उसी की, विचार उसी का, उसी में रात दिन रमी रहती है। तूने विचार ये है स्वजनम आर्य पथन से हित्वा, हे अर्जुन मुकुंद पदविंद, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया। श्रुति फिर प्रेम जो वेद के हिसाए है वे ढूंढती फिरती है, भगवान को हिसाए ढूंढती है, उस पद को गोपिका प्राप्त हो गई। तो कितनी विलक्षण था, पहले वो कुटुंब भी नहीं छूटते, और कुटुंब ही छोड़ करके भगवान की तरफ चले तो उन्हें फिर वो रास्ता तो धर्म का रास्ता है वो नहीं छूटता। अरे वो पकड़ा नहीं जाता लोगों से, तो धर्म का धार्मिक विचार है वो पद्धतियों पालन करना कठिन है, तो वे पालन करना कठिन नहीं है, उन्होंने तो त्याग दिया। को परसते मुक्ति मिलते हैं चार, जिस वेद रज की सेवन करने से मुक्ति मिलते हैं चार, चार मुक्ति मिलती है। वाद रज को ब्रज गोपिका दार डगर बुहार, ये सोचा मैया झाड़ू देकर वो रजि है कन्हैया की, उनको पूरा करके सौर बाहर फेंकती है। कहते आई कि पुत्रा को भगवान ने मुक्ति दे दी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघन सया पाए दप्य साधि तीर्थाम कौवा दयालु शरण भजे। महाराज व्यास जी ने भागवत बनाई तो सुखदेव जी तो बस यम प्रभन तुम अनुपेत मपेत कृत्यम नहीं पाए विरह का तो राज जन्म से कर दिए अनुपेतम उपयुक्त नहीं जिन्हें वो संस्कार नहीं हुआ अपेत कृत्य कृत्य कोई बाकी नहीं करना संसार में कुछ बाकी नहीं अरे वह दाम जरूर संस्कार भी पीछे वेद व्यास पीछे पीछे आते सुखदेव सुखदेव तो सुखदेव परवाह नहीं करते तरव भी ले दू वहां से वृक्ष और पहाड़ से उनसे प्रतिध्वनि आती है सुखदेव दादा सुखदेव ऐसे मानो संपूर्ण हृदय में सबके भीतर विराजमान सुखमुनि उत्तर देते हैं कि सुखदेव सुखदेव के पुत्र के पुत्र पुत्र तो क्या अर्थ हुआ इसका मानो सुखदेव जी वृक्षों और पहाड़ों से कह रहे हैं आप कहते हो पुत्र तो किस जन्म के आप पुत्र हो किस जन्म का मैं पुत्र हूं ये नहीं रहता है संबंध है ये तो कभी पुत्र वो हो जाता कभी बेटा पुत्र हो जाता पुत्र का पुत्र पति हो जाता है पिता हो जाता है तो पुत्रे तन्मय तरगो भी दे दू वृक्ष बोले प्रतिध्वनि हुई सर्वभूतायम संपूर्ण हृदय में जो व्यापक होने पड़ने वाले सर्वभूत हृदय हृतायम हो गया अयम सब में परिपूर्ण व्यापक सुखदेव जी महाराज पुत्र तन्मय तरा तरुण तम स्तम सर्वभूत हृदय मुनि महात्मे उसको नमस्कार करते सुनती महाराज तो ऐसे तन्मय हो सब जगह परिपूर्ण सुखदेव जी महाराज भी विरक्त हो गए पिताजी के पढ़ाने से तो बुलाने से आए ही नहीं तो व्यास जी ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया भागवत पढ़ाया भागवत बना करके बेटा ये अध्ययन कर लो तो गुरु महाराज के सुचित कर ही अध्ययन कहते जहां सुखदेव अरे जिस जंगल में उससे समझा लिया हो पर ये घुनर की जो लकड़ियां है ना जैसे यज्ञ होता है वो संविदा होती है वो संविदा लगाओ डाब ले आओ पत्ते ले आओ पीपल गुजरा देखे पूजन सामग्री लाने के लिए विद्यार्थियों को भेजा तो विद्यार्थी याद करते थे भागवत याद करते थे तो पढ़ते रहते थे पढ़ते रहते एक बात याद आई अमर समय ब्रह्म बोलता है वहां बहुत साधु व्याकरण पढ़ते थे हम जब पढ़ते थे इस पढ़ाई में आजकल पता नहीं है बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे व्याकरण की पढ़ाई मुख्य होती थी तो पढ़ाई करते फिर घरों में भिक्षा में चले जाते तो भिक्षा लिया पा लिया फिर पढ़ाई करते तो पढ़ाई करते याद करते थे तो नारायण हरि कहा वो देखो अंशी क्या बोलते बोले को वो याद कर रहे थे मुझको बोल दिया बड़ा मन में आ गया कोई बोल दिया अब भिक्षा को आए हैं और बोलना है उससे चलता लगा ऐसी बात करा जो विद्यार्थी वहां पहुंचे तो श्लोक बोला अहो बकीय स्तन कालकूटम दिघन सया पाय दत्त साध्य असाध्य हो उल्टा वैश्या खरीब आचरण वाली बकासुर की बहन बकी, ओहो बकी हम स्तन कालकूटम, स्तन के कालकूट जहर लगाया बच्चे के जो स्पर्श हो जाए तो मर जा, बच्चा कोमल बहुत होता है, स्पर्श होने में जो स्तन कालकूटम उधर जा करके भगवान को ले लिया गोदी में, गोदी में लेकर पियो दूध पियो। अब दूध तो हृदय में प्रेम होता हुआ है ना, हृदय में जो द्वेष है मार रहा है बालकों को, तो दूध कैसे आवे, वो स्तन कालकूटम कालकूट जहर दे दिया मुंह में, छोटे बालों को छुए तो मैं यार मुंह में दे दिया, तो ठाकुर जी ने पिया सब पिए तो खेच रहे बालू तो खेचे दूध पिए दूध तो खेचे तो क्या दूध हो तो आवे खेचा जोर से तो प्राण खींच गए कि श्वास श्वास मरी मरी हुए तो श्वास खींच गया कितना दिन जीवे मुंज मुंज प्रभात में, अरे छोड़ रहे बालो छोड़ दे छोड़े नहीं मरने के बाद ही छोड़े जा अब तो जलगी जलगी पकड़ी गई ऐसे जिघंस आप आए पेशाद जी जिघंस हंत में छया मारने की इच्छा से उसने जहर पिलाया तो ले देगा तीन धात्री साहब तो दाय माए को मिलनी चाहिए भोगत दी दूध पिलाने वाली माँ को भोगत दी भगवान ने कौवा दयालम शरणम उनसे स्वाद दयालु कौन हुआ किसके शरण जाओ ये भागवत का श्लोक पढ़ने लगे तो सोचे ये श्लोक कहाँ का ये श्लोक कहाँ का है तो ये भागवत का ये भागवत कौन है तो व्यास जी ने बनाई है हम लोग पढ़ते हैं उसमें ऐसी बात है जहर पिलाने वाले को अमृत देते हैं ऐसे भीषण है तुम पढ़ेगा महाराज आकृष्ट मन खींच गया व्यास जी गर्ज करते थे अब सुखदेव जी गर्ज करते महाराज भागवत पढ़ाओ हम तो पढ़ाते यही तुम चले जाते हम तो व्यास ने भागवत पढ़ाया भाग सब याद है तुम्हें जब सुखदेव परीक्षित राजा राज्य छोड़कर जंगल में आ गए गंगा किनारे जब सुखताल है ना सुखताल वहां की बात बताते हैं वहां आए राजा तो ऋषि मुनि है सब इकट्ठे हुए वही राज ऋषि है परीक्षित राजा बड़े संत है ये बोले महाराज पांडवों के वंश में समझे पांडवों का संतान बीज अंकुर पांडव नाम परिषद गर्भ में थे ना अभिमन्यु के पुत्र गर्भ में थे तो द्रोणी ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने कह रहे अगर पांडवा नाश कर देना वंश नहीं चलने देना है सोते हुए पांडव पुत्र से पांच पांडवों से द्रोप से पैदा हुए पांच सुतो सुतो उनका सर कर दी मर दिया और सबको मार दिया बड़े अब ऐसे विलम्ब मार दिया भैया ये गर्भ में एक बालक रह जाएगा तो ये वंश चल जाएगा तो नारायण से चलाया जो न्यस्त व्यपृष्ट में दम मदम वो आया मराया घरों को नाश करने वाले उत्तरा घबराई उत्तरा का इतना जीवन चरित्र प्रसिद्ध नहीं है मैं तो देखता हूं द्रौपदी का जीवन भी पढ़ने में आता है और उत्तरा का भी आता है तो द्रौपदी से द्रौपदी जी बहुत तेज हुई अभिमन्यु की द्रौपदी सासु लगा था तो ऐसे महाराज तेज उसकी भक्ति बड़ी तेज جوبنی سے بھی تیز اس کی بنتی چھوٹی چھوڑی پہلا ہی گھر میں وہ اوسط چھوٹی پرنتو بھاری ملا بھکتی ان کی بہت آگے نہیں بڑھتی. تو بایو داد گھر تو وہاں پر بھگوان رکشا کرتے ہیں چھوٹا سا بن کر کے ہاتھ میں گلا لیے ہوئے اور گھر بگیچہ ادھر گھومتے رکھا کر درنست وپلوشت ملم مدنگم سنتا ندیجم کر پانڈوا نام جگوپ کوکشنگر آت چکرو ماتست پریشت کہتے ہیں سونے بنا دیا صاحب کہ بنا تو بھگوان نے کتھا سناؤ دروناچاریہ کا پتر سوتا تھا اس نے استر چلایا تو دروناچاریہ ملم مدنگ میرا انگ ہے وہ چاہ نے ختم کر دیا ایسا بچہ کومل کومل گرم باس میں کتنا کومل بچہ ہوتا ہے اس کو ناش کرنے کی لگائے سنتان بیجن کرو پانڈوا نام گرو پانڈوا نام سنتان بیج بیج گائیے جسے بن سکے گا وہ بنا تو اترا پہنچی ہے اترا نے پرارتھنا کری ہے کہ مہاراج میرا دیہ بنے اندر جا ہے اور ان کی رکشا کرو مہاراج ان کا بل سمجھ دیا سوستھ رکشا کرو ایسے بھگوان سے پرارتھنا کریے تو اترا کا جو ورن ہے وہ بھگوان سے پرارتھنا کرتی ہے بہت دن دکھ کامم دہ تمہیں دے ہم میرا شری بےشن درجہ میں کبھی پرکاری کا پرکھ نہیں کرتی کہ میرے نہ ہوئے یہ سنتان بیجن کور پانڈوانا کور پانڈواں کا سنتان بیج ہے ایسی رکشا کرو تو بھگوان نے رکشا کری ہوئی سے تو سکھدیو جی مہاراج سے پرشنت کہتے ہیں ماتست میں یا شرمن بتایا میری ماں شرد ہوگی بھگوان اور پیٹ اپنے تمہیں اسے میں نے دیکھا چھوٹے سے بھگوان میرے چاروں کو گھومتے ہاتھ میں گلا لیے ہوئے لوگوں کو کنگت آت چکر چکر لیے ہوئے آت چکر چکر جگڑوں کو جنم ہوا تو چھٹے سر چوہے کی طرح چھٹا سر بچہ وہ دیوتا ہے اندر اندر تو پڑتا ایکشڑم پریکشت ہوا نام چاروں تو درشن دیوتا ہے دیکھا نہیں بھگوان نہیں دیکھے چکر سنا ہوا پریشت تو پریشت اتنا بھگت بھگوان کا اور رکشا کر لی اور یدھیشٹھر مہاراج کا بیٹا ہے نا ارجن کا بیٹا تو بڑا باپ یدھیشٹھر مہاراج اور یہ سنتان بھی نبھانا تو پرجا کی رکشا بڑے پیار سے پریم سے آدر سے کرتے تھے. پانڈوا کی جو بات ہے مہاراج پریشد جیسے یدھیشٹھر مہاراج راجی کرتے ہیں ایسے پریشد راجا نے راجی کیا سب پرجا کو پسند رکھنا دھن دھانیہ سمرد راجی ہو سب کا ایسا راجی پریشد مہاراج نے کیا. جب پریشد مہاراج کو شاپ ہو گیا سمیگ رشی کے شش نے شاپ لے لیا راجا پریشد گئے تو کلجو کو اور دیکھا تو ایک گائے اور ایک بیل بوڑھے جا رہے ایک پگ ہے کلجو کے بیل اور وہ مار رہا ہے مر رہا بندوق ہو رہے گا تب کہا مہاراج میں قریب ہوں अब मेरा राज्य आता है, अगर मेरे राज्य नहीं होगा तो परीक्षित रक्षा करी तो धर्म रूपी बैठाओ, तो उस एक पग रह गया, ये निकाल जिन्हें दान करे कल्याण, एक चरण रह गया, तीन सराज काट गया उसे को मारने लगा। पृथ्वी गाय गाय बहु रूप रोने लगी। महाराज परिषद ने पूछा कहो माता रुचि से हो क्या, फिर बेटा मैं नाम तो नहीं बताती, नहीं बेटी मेरे को दुख दे रहा है, उसे नाम कौन मैं दुष्ट समझे, तो भैया तुम खुश रहो मैं रक्षा करूंगा। तो धनु लेकर पीछे पड़ा, कलयुग शरण आ गया, महाराज मैं रक्षा करूं, मेरा ब्रह्मा जी का दिया हुआ भगवान के लिए और राज्य है तो मैं राज्य करता हूँ, मेरा राज्य रहेगा, तो तू ये दुख देता है तो मार डालूंगा, मेरे राज्य में गाय आंसू पड़ेगा, गाय गऊ है ब्राह्मण है इनका आंसू आ गया, मेरे राज्य मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो शरण हो गया, महाराज मैं आपके शरण हूँ रक्षा करो, मेरे को कहीं रहने के लिए जगह दो। तो कई जगह दिन तीन चार, उसमें एक भी सोना सोने में पूरा करो। तो एक दिन गए परिषद शिकार करने, सोने का मुकुट धर दिया सिर पर, तो वहां प्यास लगी राजा को, तो गए तो समय ऋषि बैठ गया बड़े ध्यान में, महाराज प्यास लगी एकदम बैठ रही, बोले नहीं तो कद्दू प्रवेश करिया भीतर, तो मरा हुआ सांप पड़ा था, सांप उसको धनुष की नाव से उठा कर गाय में डाल दिया। समझ झूठी है सच्ची एक ऐसा है, चला गया। उनका शिष्य वो वहां बच्चों के साथ खेल रहा था, स्नान करता था नदी किनारे, उसको कहा तुम्हारे गुरु जी के गले में, तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल दिया राजा ने। तो उस रात देखा उसने जल्दी सांप दिया कि जिसने सांप डाला सातवें दिन यही सांप तक से उसको खा जाकर मर जाए, सांप दे दिया। समय के जिसको को मालूम हुआ, अरे क्या किया बचपन से बालकपन दिए तेरी तो समझता नहीं है, राजऋषि है परिषद, इसलिए जीने से कितनी प्रजा को शांति है, कितनी प्रजा धर्मात्मा हो गई है, उसको तेने सांप दे दिया, क्या हो गया सब डाल दो क्या हो गया। मुझे शिशु को मैं जाकर परिषद को कह दो अब सात दिन है तुम्हारी उम्र, बालक ने मिल गया सांप, तो वसुदेव जी वो सरदार छोड़ करके चले गए। राजऋषि है परिषद, इसलिए जीने से कितनी प्रजा को शांति है, कितनी प्रजा धर्मात्मा हो गई है, उसको तेने सांप दे दिया क्या हो गया सब डाल दो क्या हो गया। मुझे शिशु को मैं जाकर परिषद को कह दो अब सात दिन है तुम्हारी उम्र, बालक में मिल गया सांप, तो वसुदेव जी वो सरदार छोड़ करके चले गए। तो वहां गंगा किनारे आकर बैठे, अब सुखताल कहते हैं जहां वहीं बताते हैं यहां आकर बैठे। तो जितने ऋषि मुनि संत महात्मा सब हो गए इकट्ठे, परिषद आ गए साहब, वो कह दे बस हम तो राजभाज तो बेटा संभालो, हम तो मरेंगे धन में जय कर। तब ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए, उनसे राजा ने पूछा कि महाराज मरने वालों को क्या करना चाहिए, बहुत आ गया तो वो क्या करे, किसी ने यज्ञ करो, किसी ने तप करो, किसी ने दान करो, किसी ने कोई अनुष्ठान करो, अलग अलग विषय ने बात बताई। विचार हो रहा था इतने महाराज 16 वर्ष की अवस्था है, शाम दिन का शरीर है, अवधूत वेश अपराध लगता उसमें है, भागवत का पाठ कर रहे हैं, भागवत का मन लगे, भागवत का पाठ कर गो ऐसे शोक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं मस्त में चल रहे हैं आपके पास मौज में। वृद्धा स्त्री बाहर गई रब उठी तो बेच लगा स्त्री और स्वीकृति हो गई, वो देख तो चित्त स्वरूप देख करके चित्त आकर्ष हो गया सबका, स्त्री साथ हो गई, बालक रूप इकट्ठे हो गए, फिर सब कोई दूध फैलता है, कोई पत्थर फैलता है, पागल है कोई, ऐसा करता है कोई, तो संत है। सुखदेव जी महाराज जो हर श्लोक पढ़ते वे आ गए और ये सब चला तो भाग खुद गया, सुख भी आ गए, निहाल हो गया तू बुलाए साहब, सब उड़ खड़े हो गए, बड़े बड़े बूढ़े लंबी लंबी दाढ़ी देखे, अरे वो एक बार 16 वर्षों तो राजाओं में बैठने उठने का विचार ज्यादा होता है, किसको कुर्सी दी जाए, किसको उत्थान दिया जाए, किसको किस आसन में बैठा जाए, तो उसने देखा विचित्र बात, अभी पारस जी बैठे हैं, व्यास जी महाराज बैठे, बाप और दादा बैठे, सुखदेव जी गए बाप दादा ही वहां बैठे, सब बड़े बड़े ऋषि मंदिर सफेद सफेद दाढ़ी वाले। तो परिषद ने पूछा कि महाराज ये क्या बात है, आपके सामने बालक आया और आप सब खड़े हो गए, ये तो आपका बच्चा है। ये परिषद हमारे बड़ा छोटा नहीं होता, हमारे सदा सर्वे से ज्ञान वृद्ध से किंकरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान वृद्ध होता है, कोई वयोवृद्ध होता है, कोई धन वृद्ध होता है, कोई पद वृद्ध होता है, पद ऊंचा है वो पद वृद्ध है, जमीन ऊंचा है राजा राज्य पद है, वो विद्या में ऊंचा है वो विद्या वृद्ध है, जिसको बोध है प्रेम जिसकी अधिक है और परमात्मा बोध है वो सबसे ऊपर, वयो वृद्ध से धन वृद्ध से अवस्था वृद्ध से जितने वृद्ध है जितने तरह गए सब वृद्ध हमें वृद्ध वो मान जाते, वो बड़ा मान जाता हमारे, तो सुने हमारे सब बड़ा है, वृद्ध त्यागी है, किसी से कुछ लड़ा नहीं, किसी कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे आ गए तेरे उनको बैठाएगा महाराज तुम परिषद को सुनाओ, तो भागवत सुनाया सुखदेव जी महाराज, ऐसी भागवत पढ़ा सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी के मुख से, तो वो आकृष्ट हुए हैं, वृंदावनम सबदरमनम प्राविशुद्ध कीर्ति, ऐसे श्लोक सुने करने का रहा, ऐसे भगवान की उपकरण में एक श्लोक एक वकीम ये श्लोक सुना, तो पढ़ा महाराज वे सुखदेव जी महाराज कितने प्रसिद्ध हो गए, सुख मुनि का सुखदेव का परिषद का संवाद है, तो ये भगवान के गुणों को सुन करके सुखदेव जी ऐसे आकर्षित हुए जो बोल से बोलते नहीं थे, व्यास जी पुत्र पुत्र करके पीछे जा रहे थे, तो वे जाते हम प्रभ्रजन मन पे संकेत गए, पीछे पीछे व्यास जी महाराज आगे आगे सुखदेव जी, तो कई अप्सराएं स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी तो वो ऐसे ही करती रही। व्यास जी वो देखा चट कपड़े पहन ली कि तू मेरी कन्या के समान हो, बेटी हो तुम तो। अब बड़ी अवस्था वाला सुखदेव गया यहाँ, उसको देख कर तुमने कपड़े ही नहीं धारण किया और हमारा देख किया, तो बेटी क्या बात है। व्यास जी पूछे तो पिताजी बात यह है कि आप भी ज्ञानी महात्मा है, बिरुद्ध बेबी ऐसे महात्मा है, परंतु उसकी ऐसी उपलब्धि है कि वृक्ष खड़ा है, कोई स्त्री खड़ी है, पुरुष खड़ा है, ख्याल नहीं, उनको पता ही नहीं है। आप आए हम कपड़ा न पहन तो आप कहते कहती निर्मल छोरिया है तो कपड़ा ही नहीं पहन, विश्वास पड़ा आपके आदर के लिए हम कपड़ा पहनती है, आप जो बेउनी छोरा कैसी है कपड़ा ही धारण नहीं करती, तो आपके आदर के लिए। सुखदेव जी परवाही नहीं, वृक्ष है वे सुखदेव जी महाराज भगवान की लीला सुनकर आकृष्ट हो गए। भगवान की ऐसी विचित्र लीला है। आत्मा रामास्त मुनयो दृग्रंथा पुरुक्रमे कुरुन चहेत विम भक्ति मिथुम भूत गुणो हरि। आत्मा राम रात्म अपने आत्म परम स्वरूप में निरंतर रहते हैं। निर्ग्रंथा शास्त्र से ऊंचे उठ गए और निर्ग्रंथा ये चिरचर ग्रंथ जिसकी भेदन हो गई है, अज्ञान नष्ट हो गया है, वही गुरुक्रम परमात्मा में मन लगाते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते गुरुक्रम। तो तीन कदम से भी कम करना त्रिलोकी हो ऐसे भगवान उनका चिंतन करते हैं, वे भी ऐसे मस्त हो जाते हैं कि आत्मा राम अस्त मुनि दृगंथा क्रमे कुलम से अहेतु भक्ति। भक्ति करके कोई कल्याण नहीं, कोई कुछ कामना नहीं। भागवत माया अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम होगा तीव्र भक्ति योग्य न यजे तो पुरुषम परम। सुखदेव जी वो पूछते क्या करना चाहिए, और सुखदेव जी का अकाम जिनके कोई कामना ना हो, वो क्या पूछे मदद हमारे कोई काम कामना हमारी कोई चाहना कुछ भी चाहना नहीं है, तो भगवान की भक्ति करो भजन करो। दूसरे पूछा समुदाय में तुम क्या चाहते हो भाई, कमरा हम तो भोग और मोक्ष संसार बाल बच्चे सब धन संपत्ति राज वैभव और कल्याण और मुक्ति सब चाहते हैं, सब चाहते हैं तो भक्ति करो भगवान की, बिना भगवत भक्ति के सब चीज समझे सब चाहते भक्ति। और तीसरी श्रेणी को पूछा तुम क्या चाहते हो, हमारा धन तो कल्याण था केवल मुक्ति हो जाए और कुछ हमारे साथ क्या करें भक्ति करो। अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार भी तीव्र भक्ति योग तीव्र हो दिए देते पुरुषम परम परम पुरुष को अल्लाह भजन जप कीर्तन कर रहे मस्त हो रहे मत चिंता भगवत प्राण बोल यंता परस्पर कल्यंत समान नित्यम तुष्यंत रवंत उसमें रमण करते उसमें खेल करते क्या होगा क्या क्या मुक्ति होती है क्या नहीं है पर वही नहीं। मुक्त निदार निराबरी और भक्ति लुभाने भक्ति मजाक नहीं देते पर वही नहीं करते किसी ऐसी भक्ति में लगे कहते ऐसे कुरूंती क्यों क्यों करते हैं काहे दुगो कोई कामना नहीं कुछ चाहना नहीं कुछ भी नहीं चाहिए ज्ञान व्यान कुछ नहीं चाहिए तो कुरवंती है तो ये भक्ति कहते वे क्यों करते हैं कि इतम भूत गुणो हरि भगवान ही ऐसे है भगवान ऐसे विलक्षण है जो मेरे का मन भी भगवान में खिंच जाता है भगवान की तरफ फिर जाता है। कैसे फिरता है? कहते हैं चंद्री चंद्रमणि होती है, वो मणि होती है, चंद्रमा पूर्ण खिलते हैं तो वो टपकने लग जाती है। मणि पत्थर होता, पत्थर उन चंद्रमा को देख करके पिघल जाती है। ऐसे संत महात्माओं का हृदय, तत्व के जीवन मुक्त का हृदय, वो मणि की तरह कठोर होता है, कठोर मणि पत्थर होता है। परंतु जहां भगवान का गाता है, भगवान का गुण देखे, भगवान का स्वरूप देखे, वो पिघल जाता है। चंद्रमा देवते चंद्रमणि है जो टपकने लग जाती, टप 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 अमर देखते है। ऐसे जो संत है जिनका वैराग्य को किसी में राग नहीं है, वो भी भगवान को देखते तो भगवान का चित्त ही, वो संतों का चित्त द्रवित हो जाता है। जैसे जनक महाराज ने देखा राम आए विश्वामित्र के साथ, तो बैठे थे राम जी लक्ष्मण जी फूलवाई बिखरने बिखरने को, बच्चे तो खेल देखने हो, महाराज बैठ गए, विश्वामित्र बैठे थे, वे बालक आए तो मेरे लोग उठ गए एकदम ही, विश्वामित्र जी मेरे पास बैठाए। तो राजा ने पूछा कि महाराज ये बालक कौन है? मुनिकुल तिलक रुतकुल पालक, मुनिकुल तिलक है कि रुतकुल पालक है? मान मुनियों में श्रेष्ठ बालक है उनके है, अथवा राजाओं में श्रेष्ठ है ये? बात ये थी कि महाराज के गर्भमुखता की माला थी, बढ़िया बढ़िया मूर्ति कीमती उनकी माला पहन रही थी। अब बाबा जी के साथ था वो तुलसी की माला पहना दी, तो राजा ने पहले दोनों बातें, ये तुलसी की माला देखने तो कोई ऋषि कुमार हो सकते है, और इतने कीमती रत्नों की माला पहनने तो कोई राजा महाराज हो सकते है। बाबा जी जाकर बाबा के पास जाकर कहा मिले, इस बात से पूछा ये मुनिकुल तिलक की मिल मुनि कुलियों में तिलक है, मुनियों के बीच में सबसे ऊंचा तिलक रूप है, अथवा नृपकुल पालक राजाओं के वंश की रक्षा करने वाले, दुनिया की रक्षा करने राजा, उनकी रक्षा करने कौन है? क्या परमात्मा है साक्षात? क्या आया है ऐसे लोग? राजा जनक ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, भगवान भगवान हंस गए उसमें कि फूल मत निकाल देना, माया हास है भगवान का। दशरथ जी के बेटा है अयोध्या के राजकुमार है, हमारा यज्ञ पूर्ण करने के लिए हमारे रक्षा किया है, ऐसा परिचय दिया। राजा बड़े आकर्षित हो गए, वो कहते हैं राजा पूछते हैं कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरे को बैराग करना नहीं पड़ता है, विजय थे तत्व के जीवन मुक्त थे, ये दुख दोषारू दर्शन करके बैराग कर सहज विराग रूप, मेरे मन बैराग स्वतः स्वा बैराग, कहीं राग होता ही नहीं, ऐसा विराग रूप है। वो जिन चंद्र चकोरा स्थगित हो, तो जिन चंद्र चकोरा जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर खिंच जाते, ऐसा मेरा मन खिंच जाए, नेत्र खिंच गए, कौन है क्या बात है? चाचा का भी संदेह बड़ा, मेरा मन हरेज में जाता नहीं है, जो बालकों में चला गया चित्त, और बालकों में चित्त खिंच गया तो कुछ है नहीं। तो चंद्रमणि जैसे चंद्रमा को देखकर टपक पड़ती है, ऐसे संत महात्माओं के हृदय में भी ऐसी बात होती है, जो भगवान के स्वरूप को देख करके उनमें एक विकार पैदा हो जाते हैं। इसे भी बात शेर की योग वशी पद्धति ज्ञान में ज्ञान ही महात्मा थे, तो एकदम सोते थे। एक गुप्त बात है, हमारे को मिली है ऐसे जो ऊपर तिबारा शेर हल्दी का चूरू में शेर जब मकान देखा, ऊपर मकान है जिसका तिबारा है, उस तिबार में कुछ शरीर में कुछ थोड़ी सी कुछ रोग था उसके लिए जो तद रोट है मैं सोए हुए कह रहे हूं तद्दर ओढ़े हुए सोए तो बिजनेस चतुर्भुजी रूप देखने शुरू हो गया। तो चतुर्भुजी रूप देखा तो वो जो कपड़ा है ही नहीं। शेर जी कहते थे भगवान जब दर्शन देंगे तो पहाड़ भी बीच में हो तो पहाड़ आड़ नहीं लगा सकता, और कोई आड़ नहीं हो तो साफ दिखेंगे साफ ही साफ। तो चंद्रमन कोई फाट गई हो बीच में है ही नहीं ऐसे, ठीक है। दिख तो विशेष असर आया जो इस दिन में हलचल हुई। शेर जी कहते मैंने समझा कि मेरी विकार है, अभी ज्ञान होने पर निर्विकार हो जाता है अंतःकरण, तो मेरे विकार आ गया वो दर्शन कर रहे थे तो भी कुछ कम ही है ज्ञान की। फिर ये विकार नहीं है, ये प्रेम होता है, भगवान का प्रेम होता है। दृष्टांत दिया चंद्रमणि का, तो मणि को देख करके जैसे मणि चंद्रमा को देख कर टपकने लग जाए, ऐसे ज्ञानी रूप महात्मा तत्व के जीवन मुक्त का हृदय भी द्रवित हो जाता है, उनके हृदय में हलचल हो जाती है भगवान के दर्शन से। वो संसार के पदार्थ जो नहीं होती माने, जो भोग पदार्थ है संग्रह ऐश्वर्य है कि माधुर्य कुछ संसार की जो बात है उनसे स्थिति में कोई विकार होता ही नहीं। तो वो शेर जी तो बड़े विलक्षण थे ना, अपनी परीक्षा करते कसौटी कसते रहते कि ये विकार कैसे हो गया। सर्वसाद विकार रहना चाहिए, कोई विकार नहीं हो, समता का वर्णन किया ना, अनुकूल पदार्थ प्रतिकूल पदार्थ के मिलने पर भी जिसमें कोई असर ही नहीं पड़ता। एक कथा आती है, सुखदेव मुनि ने व्यास जी के पूछा तुम्हारा जो तत्व ज्ञान क्या है, तो व्यास जी ने कहा तुम जाओ महाराज जनक के पास जाओ, तत्व ज्ञान लेने के लिए वहां जाओ, परंतु ये सिद्धा ही मत करना, पैदल पैदल जाना, ये उड़ कर चले जाओ ऐसे, गुरु के पास अपनी सिद्धा ही नहीं दिखानी, ये नहीं दिखानी, नम्र होकर सर्व को जाना। तो पैदल पैदल पहुंचे राजा जनक के वहां, दरवाजे पर पहुंचते ही रवाना कटा रवाना, खबर दी कि सुखदेव मुनि आए, व्यास पुत्र सुखदेव मुनि आए, कहते वहीं ठहरा हो। जनक महाराज ने कह दिया वहीं ठहरा हो, वहीं खड़े रहे तीन दिन हो गए, कह दिया वहीं ठहरा वहीं खड़े, तीन दिन तक खड़े। आदमी से पूछते रहे कि उसके चेहरे पर क्या भाव आया है, बोलते क्या है, कुछ कहते हैं, खबर लेते रहे कि मुझे कोई फर्क नहीं होता, मैं निकाल वैसे ही खड़े। राजा ने कह दिया कि वही खड़े रहो वही खड़े। फिर जवान जवान स्त्रियों को बुलाया कि जाओ तुम उसको स्नान कराओ, मालिश करो, स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, अपनी तरफ से कुछ मत करना, जो भी हुजार बोले कुछ चेष्टा करे तो हमारे कुछ करो, तो खबर लेते रहना क्या हुआ है। तो सब श्रृंगार करती कहे क्या विचार है, उनके रस्तियों को बुला करके उसने कहा तुम लोग देखा तो कुछ विचार हुआ, कहे महाराज जोग चढ़े खून है वहां तो और पत्थर पर थोड़े चले पत्थर पर जोक लगा चली आ गया खून बैठा हुआ तो हम कितने हिस्से कराओ कुछ हिस्से करो कुछ नहीं बेकार होता ऐसे बेकार होता हम तो अपने सब कर चुके आपने कहा तुम मत करना अपनी तरफ से था मत नहीं किया और स्नान कराया कपड़ा पहनाया सब कुछ किया तो अमर है जैसे इधर से बैठे तब फिर बुलाया बुला करके पूछा कि महाराज बोलो कैसा आए हो तो महाराज जान लेने के लिए आया हूं जान लेना है मेरे को महाराज ने कहा महाराज ज्ञान बताया ऐसा तत्व ऐसा तो ये तो मेरे पिताजी ने ही कहा था ये बात तो पिताजी ने भी कही थी अब ज्ञान वचन वो भी ज्ञान के बाद अलग कोई ज्ञान थोड़ा ही होता है ये तो पिताजी ने बताया था वो ही है तो यह भेजा ज्ञान देने के लिए तो जनक राजा ने कहा महाराज अब आप ऐसा करो एक बार बैठ जाओ अगर उसी ज्ञान में मन लगा तो बैठो आपके बयान है ज्ञान नहीं हुआ बैठ जाओ फिर हो जाओ सब हो जाएगा ठीक सुखदेव मुनि गए और जनक से वहां जाग सीखने के लिए ऐसी बात है अब ज्ञान सीखे क्या सीखे ऐसा तो उसके शरीर है हाल है जब कोई विकार ही सारी नहीं होता ऐसे में तत्व के थे जीवन मुक्त थे परंतु ये बहम रह गया चतुर साधक होते हैं ना अच्छे वो साधक ही हो जानकर संतोष नहीं करते कभी इतना जान लिया तो अब संतोष गुरु हो गया ऐसी भावना कभी नहीं करते वो तो कहते और है और सुन कर और करो इतना भोग लगा और सुन कर और सुन कर तो व्यास में बिजल जाओ धन के पास जाओ वहां से क्या लो वो क्या नहीं है तब तुम ये जीवन मुक्त है वहां से ले तो बाबू जनक महाराज ने कहा बैठ जाओ बैठ करके चुप हो जाओ तो आप साफ हो जाएगा ठीक फिर सुखदेव जी महाराज आए पीछे महाराज जनक को गुरु बनाया जनक कहते हुए अब तो गुरु हो गई पर जनक जी का फिर वो बैठे तो संतोष हो गए फिर अब संतोष हो गए आज विलक्षण बात है क्या कह रहे थे वे बीस माह में सब लिख रही कथा तो निर्विकार होता हूं तो उस निर्विकार में जो चंद्रमा को देख कर जैसे मणि टपके ऐसे शेर जी ने कहा कि ज्ञानी महात्मा तत्वों के जीवन मुक्त उनके विकार नहीं होता पर भगवान का स्वरूप सामने आ जाए तो उनकी हलत हो जाती है जैसे समकालीन गए वैकुंठ में द्वारपाल में रोक दिया तो भगवान आए वहां भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ी हुई थी शिव नमस्कार किया तुलसी की सुगंध आई बड़ा रोमांच हो गया गदगद हो गया आसमान तुलसी गंध से दूसरे विषय है ना ध्यान का विषय इतना जबरदस्त नहीं है इससे कोई व्याकुल हो जाए आदमी शब्द का ऐसा है स्पर्श का ऐसा है रूप का है रस का है ये विशेष आग्रह करते हैं बल सुगंधि आप नहीं लोग जन्म भर तो कोई मन में ही नहीं आती दूसरे इंद्रियों का विषय तो धैर्य की आती है तो सबसे कमजोर है वो होते ही संकादि हो गए हमारे सुख पहले होंगे संक्षोभ मक्षा में अक्षर दूसरा मत अक्षर परमात्मा तत्व को जानने वाले सेवन करने वाले सनकादिकों के हृदय में भी चित्त और शरीर और चित्त पर अचल हो गई हृदय गदगद हो गया रोमांच हो गए शेर जी ने समझा कि हमारे कमी है कोई ये विकार कैसे हो गया ये बात फिर विचार ये विकार विकार नहीं है ये तो इत्थम भूत गुणो हरि आत्मा रामाष्ट मुन मृगम था अभी उरुक क्रमे कुरुम से आहेत की भक्ति क्यों करते हैं इत्थम भूत गुणो हरि भगवान ऐसे ही गुण वाले हैं ऐसे ही विलक्षण है ज्ञानी नाम मन ज्ञानियों के मन को ही हर देते हैं जिसका मन कहीं नहीं जा रहा जन के ऐसी हुई जन के ये दशा हुई सुखदेव जी को गुरु राम जी को देख दिया क्या बात है बोले ये बात है भगवान के सगुण की महिमा बहुत विलक्षण है विचित्र है ज्ञानी भी कैसे निरीक्षण ज्ञानी उनके हृदय में ऐसा हो जाता है भाव तो वो बात सुनकर उद्धव जी महाराज के सामने गोपिकाओं कहने लगी बात करने लगी उद्धव जी महाराज फिर गए पीछे राम भगवान के पास हो महाराज यहाँ सूखे देश में क्या बैठे हो वो तरान तर देश दिल उसमें कैसी बात ऐसी तरी है वहां ग्वाल बालों के यशोदा मैया के गोपियाओं के हिंदू में कितने बस रहे हैं भगवान बस वो लाला की बात करे और लभी गायों में मेरा चाना छोड़ दिया वो भी हम आते देख दिए देखते ऐसे अहो धन्य गो रमण्य कौआ और वहां की गोपिकाएं जब ऐसी होती है गोपिकाओं के मन में आ गई गोपिकाओं छोटी गोपिकाओं बड़ी भी थी बड़ी बूढ़ी भी गोपिकाएं थी यशोदा की अवस्था भी थी उनके मन में आया कि दादाजी हम दूध पिलावे हमारी गोदी बाजी हम दूध पिलावे तो राम सदा सेवक रुचि राखी भेद पुराण संत सुर साखी तब वो आदर्श होगी लीला हुई जब भगवान ग्वाल बाल पतला सब बढ़ गए वे बालक बनकर गया मन दूध दिया महाराज बछड़ों के मन में आई गऊ माता के मन में आई कि कन्हैया दूध पिए तो बछड़े बनकर सब दूध पिया बात तो ये थी उपरिमा जो है तो लीला अलग है पर भगवान तो परित्राणा है साधु नाम एक नंबर है साधुओं का परित्राण रक्षा करने के लिए अवतार देते हैं तो साधुओं का परित्राण क्या है यही भगवान के साथ में खेले भगवान का काम करो तो बड़ी बूढ़ी गोपिकाओं के मन में आती है लाला यशोदा जी लाला हम भी दूध पिलावे तो ग्वाल बाल बढ़ गए भगवान उनका भैया गायों के मन में आई तो बतला बन गए गोपिकाओं मन में आई उसी के अनुसार वैसे बन गए उनके फन करके वैसे लीला की भगवान तो उद्धव जी महाराज चक्र आ गए फिर जाकर कहा फिर भगवान को तुम कहो रसीला जीवन तो हुआ या तो सूखी बात तब फिर भगवान ने बताया कि देख दुद्धो तो उद्धव जी ने देखा भगवान का शरीर कोरी गोपिकाओं से बना हुआ गोपिका इकट्ठी हुई है वही शरीर भगवान का और अगर गोपिकाओं में देखा तो कन्हैया 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 शरीर से ही बनी हुई है सब कैसे गोपिकाएं तुझे सदा भक्त और भगवान दो नहीं होते हैं तत्पर हो जाते हैं वैसे ही शास्त्र कहा भी कभी कृष्ण का चिंतन करते करते हम कृष्ण हो जाए तो संदेह हुआ राधे 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 करते करते कृष्ण भगवान राधे बन जाए तो राधे करते करते कृष्ण भगवान बन जाए तो कृष्ण भगवान राधा लेकर कृष्ण राधा बन जाए तो बात तो ठीक है ना राधा कृष्ण दोनों लीला वो भी वही رادھا اور کرشن بن جاتے ہیں اور رادھا بن جاتا لیلا پارک بنا دی, ادھر کرشن ہو گئے رادھا, ادھر رادھا ہو گئے کرشن. تو دامپت جیون ویسے ہی رہا ایسے بنا, تو یاد کرتے کرتے ویسے ہو جاتے. ستو گن کا سوروپ سفید مانگا ہے ستیہ, اور تمو گنا سوروپ مانگا ہے کالا. بھگوان شنکر جو دھیان کرتے ہیں وشنو بھگوان کا, اور وشنو بھگوان دھیان کرتے ہیں شنکر کا, تو شنکر ہے تمو گن جو کالا روپ ہے, دھیان کرتے ہیں تو بھگوان لوگ کال ہے, یہ دھیان کرتے ہیں تو یہ سفید. ستوگ کالک تھوڑا ہوتا ہے,